मान्या के हमले के बाद युग की सर्जरी हो चुकी थी और डॉक्टर ने उसके होश में आने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। ध्रुव और तारा अलीजा और अलीशा के साथ अस्पताल में ही थे। इस बीच सुबह के 11 के करीब कृषा की नींद टूटी। फ्रेश होकर जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसे पूरा घर खाली दिखाई दे रहा था। कृषा को काफी अजीब लगा क्योंकि अक्सर युग हमेशा उसे टाइम से उठाया करता था। आज काफी देर हो गई थी, ना तो युग दिखाई दे रहा था और ना ही वो उसके पास आया था। कृषा अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठी याशी दिखाई दी, जो अपना होमवर्क कर रही थी। कृषा तुरंत उसके पास गई और परेशान स्वर में बोली, याशी, तुम्हारे डैड और भाई कहाँ हैं? मुझे नहीं पता मॉम, जब मैं उठी थी तब डैड घर पर नहीं थे और उनके जाने की थोड़ी देर बाद ही भाई और भाभी भागकर साथ में कहीं गए थे। मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, याशी ने जवाब दिया। उसका ध्यान अभी भी अपनी बुक्स में था। कृषा ने आगे उससे कुछ नहीं कहा, वो बस याशी के पास में ही एक चेयर पर बैठ गई थी। कृषा के सिर में दर्द हो रहा था इसलिए उसने अपने सर को पकड़ रखा था, लेकिन फिलहाल उसे अपने सरदर्द से ज्यादा घर पर छाया हुआ सन्नाटा खल रहा था। ध्रुव ने याशी को इग्नोर किया, ऐसा कैसे हो सकता है? और युग कहाँ है? याशी जब भी घर पर होती है तो युग अपना ज्यादातर काम घर से ही हैंडल करता है और ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करने की कोशिश करता है। उसने ना तो मुझे जगाया और ना ही याशी को। सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है? कृषा ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो उसे एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। कृषा ने तुरंत युग को कॉल किया लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। युग का मोबाइल अलीशा के पास में था। जब उसने कृषा का कॉल आते हुए देखा तो उसने स्क्रीन ध्रुव की तरफ कर दी थी। हमें मासी को बता देना चाहिए, अलीशा ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, ध्रुव जल्दी से बोला। उसके चेहरे के भाव सख्त थे। उसने तुरंत नामे सिर हिलाकर कहा, जब तक डैड को होश नहीं आ जाता कृषा को कोई कुछ नहीं बताएगा। डैड को एक छोटी सी चोट तक लगती है तो वो उसके बारे में भी कृषा को नहीं बताते। वो बहुत इमोशनल हैं, ऊपर से एंजल भी घर पर है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं बता रहा, लेकिन अगर चाचू कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट कॉल तुम्हारे पास ही आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड कि तुम्हें मासी को क्या जवाब देना है, अलीजा बोली। जैसे ही अलीजा की बात खत्म हुई उसी के साथ ध्रुव के मोबाइल की घंटी बजी। उसने गहरी सांस ली और फिर दूसरी तरफ बात करने के लिए चला गया था। उसे कृषा से काफी शांत तरीके से बात करनी थी ताकि उसे किसी भी तरह से शक ना हो। ध्रुव के कॉल रिसीव करते ही कृषा के चेहरे पर हल्के राहत के भाव थे। उसने गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड तुमने कॉल रिसीव किया। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? वो मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? ध्रुव ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बांध रखा था। कृषा के सामने उसके लिए अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाना सबसे मुश्किल होता था क्योंकि ये कृषा ही थी जिसके सामने वो खुलकर अपने जज्बात जाहिर कर पाता था। ध्रुव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। डैड को किसी इमरजेंसी काम के चलते बाहर जाना पड़ा। लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं जगाया? कृषा ने जल्दी से पूछा। कल रात आपने ड्रिंक की थी, इस वजह से वो आपसे नाराज़ हैं, ध्रुव ने अपनी आंखों के कोने को साफ करते हुए कहा। वो मुझसे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे बाहर जाना होता है तो वो मुझसे मिलकर जाता है, कृषा ने जवाब दिया। हालांकि ध्रुव कृषा के सामने बिल्कुल सामान्य तरीके से बात कर रहा था, फिर भी न जाने क्यों उसे ध्रुव की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? वो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। क्या युग तुम्हारे साथ है? मेरी उससे बात करवाओ, कृषा ने सख्त आवाज में कहा। ध्रुव को उसकी आवाज हल्की कांपती हुई महसूस हो रही थी। ध्रुव कुछ पल रुका और बोला, नहीं, वो मेरे साथ में नहीं है, और प्लीज आप उन्हें कॉल मत करिए। अगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं तो शायद उनके आसपास की सिचुएशन कॉल रिसीव करने वाली नहीं होगी और आपका एक कॉल उन्हें खतरे में डाल सकता है। मैं तारा के साथ बाहर आया हुआ हूँ। हाँ, याशी ने बताया था, शायद जल्दबाजी में तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो तुम्हारे पीछे भी आई थी तुमसे पूछने के लिए, कृषा बोली। मैं डैड के काम से ही आया था तो हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, बाद में बात करता हूँ। कृषा, अपना और एंजल का ख्याल रखिएगा, ध्रुव ने जवाब दिया। उसे बस कॉल कट करने की जल्दी लगी हुई थी ताकि उसे कृषा के ढेर सारे सवालों का सामना न करना पड़े। ध्रुव कॉल कट करने ही वाला था कि तभी कृषा जल्दी से बोली, रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, तुम्हें तारा से गिले शिकवे होंगे, लेकिन उसके साथ बुरा बर्ताव मत करना। तुम दोनों की शादी हो गई है और जब तक इस शादी में हो उसके साथ अच्छे से पेश आना। फिलहाल उसका तुम्हारे अलावा कोई नहीं है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसका ख्याल रखो। ठीक है कृषा, अब मैं रखता हूँ, ध्रुव ने जल्दी से जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। जैसे ही ध्रुव ने कॉल कट किया उसकी नजर सामने बैठी तारा के ऊपर गई, जो कि उसकी फैमिली से अलग दूसरी बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। जब कॉल पर ध्रुव के साथ तारा ने भी युग के इंजर्ड होने की बात सुनी थी तो वो बिना एक पल गवाए उसके साथ आई थी। तारा मौलिक को भी डैड कहकर नहीं बुलाती थी, लेकिन उसके मुंह से युग के लिए डैड निकला था। ध्रुव उसे पिछले कुछ टाइम से जानता था और अब तो उसके सामने मौलिक और उसके रिश्ते की सच्चाई भी आ चुकी थी। ध्रुव ने कभी भी तारा को मौलिक के लिए इतना परेशान नहीं देखा था और न ही अपनी फेक फैमिली के लिए। जब युग को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था तब तब उसे देखकर तारा किस तरह बेचैन होकर रो पड़ी थी ये ध्रुव ने खुद देखा था। साथ ही तारा ये भी महसूस कर रही थी कि उसके आसपास होने पर ध्रुव अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो वो जानबूझकर उनसे दूर बैठी थी। ध्रुव ने गहरी सांस ली और वहां से अस्पताल के कैफेटेरिया में गया। वो तारा और अपने लिए दो कॉफी लेकर आया था। तारा मायूस होकर बैठी थी, तभी उसके सामने कॉफी का एक कप आया। उसने नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो ध्रुव खड़ा हुआ था। ध्रुव ने उसे इशारे से कॉफी लेने के लिए कहा और वो खुद उसके पास बैठ गया था। थैंक्स, तारा में इतना ही कहा और कॉफी पिए बिना ही कप को साइड में रख दिया था। ध्रुव ने उसके इस बर्ताव पर आइज रोल की और तंज भरे लहजे में कहा, मैं इसे साइड में रखने के लिए नहीं लेकर आया हूँ, मेरा मन नहीं है, तारा ने धीमी आवाज में कहा। मैंने कभी तुम्हारे अपने डैड के लिए तो तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा, ध्रुव ने कॉफी का एक सिप लेकर कहा। तारा ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो खोई हुई सी लग रही थी। कुछ पल रुककर ध्रुव ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और बहुत चढ़ाकर पूछा, अब बताओगी क्या हुआ है, इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? डैड अब खतरे से बाहर है और उन्हें होश भी आ जाएगा, सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया का असर रहता है। हाँ जानती हूँ, लेकिन मैं बहुत डर गई थी, तारा ने जवाब दिया। लेकिन ये डर से बहुत ज्यादा लग रहा है, कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, ध्रुव बोला। तारा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया तो उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा नीचे बह गया था। उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ की।
तारा की नजरें अभी भी दूसरी तरफ थीं। उसने भारी आवाज में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस भी इंसान को अपना समझती हूँ तो वो मुझसे दूर चला जाता है, वजह चाहे जो भी रही हो। मैं सच में बहुत डर गई थी कि मिस्टर राणा को कुछ हो ना जाए। इतना कहकर तारा ने ध्रुव की तरफ देखा और फिर हल्के हैरानी भरे भाव के साथ पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा था? अब नहीं लगता, ध्रुव ने बिना किसी भाव के कहा। तुम लोगों के सामने ये सिचुएशन पहली बार आई है, लेकिन मैंने बहुत बार अपनी आंखों के सामने उनकी जान को खतरे में आते हुए देखा है, बहुत बार उन्हें घायल देखा है, कई बार तो मेरी आंखों के सामने ही कोई उन्हें चोट पहुंचा रहा होता है। तो फिर तुम क्या करते हो? तारा ने ध्रुव के चेहरे को देखते हुए पूछा। फिर मैं उस चोट पहुंचाने वाले इंसान को इतनी बुरी मौत देता हूँ कि उसे अपनी आखिरी सांस तक इस बात का पछतावा होता है कि उसने किसको चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, ध्रुव ने सर्द आवाज में कहा। तारा जल्दी से ध्रुव से थोड़ा दूर खिसक कर बैठ गई थी। उसने खुद ध्रुव को अपनी आंखों से एक इंसान को मारते हुए देखा था और शायद ही वो कभी वैसा मंजर वापस देखना चाहती थी। जिस तरह से तारा ध्रुव से दूर हुई थी उससे ध्रुव के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल उभर आई थी। वो समझ गया था कि तारा उससे डर रही है और उसके डरने की वजह भी बिल्कुल जायज थी। बस ऐसे ही डर कर रहना, तुमने कृषा को शूट किया था तब डैड ने तुम्हें बचा लिया था, वरना, ध्रुव तारा को धमका रहा था। वो बोलते हुए रुक गया क्योंकि वीर उनके पास आ गया था। उनके साथ में अलीशा और अलीजा भी थीं। वीर के चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव थे। उसने भौहें से कोड़कर कहा, मैंने मानिया की लाश हटा दी थी, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा वो नर्स वहां से भाग चुकी थी। हद है, अलीजा ने फ्रस्ट्रेटेड वॉइस में कहा। जरूर वो मानिया की हेल्प कर रही थी, और ऐसे कैसे कोई भी राणा मेंशन में घुस सकता है? लेकिन उसे अपॉइंट किसने किया था? क्या राणा मेंशन में किसी को जॉब पर रखने से पहले उसके बैकग्राउंड और बाकी चीजों की जांच नहीं की जाती है? तारा ने हैरानी से पूछा। उसका हैरान होना सही था। राणा मेंशन की सिक्योरिटी एनी टाइम काफी टाइट रहती थी। ऐसे में मानिया की मदद करने के लिए कोई नर्स ऐसे ही उनके घर में इतने लंबे समय तक कैसे रह सकती थी? जैसे ही नर्स को अपॉइंट करने की बात आई, अलीजा अलीशा की तरफ घूर कर देखने लगी। अलीशा ने सिर हिलाकर कहा, एक सेकंड, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कम से कम मैंने उसके बारे में थोड़ी बहुत जांच तो की थी, वरना मानिया के केस में कोई बिल्कुल भी कुछ ध्यान नहीं देता था। मुझे उसका बैकग्राउंड सही लगा, अलीशा खुद को डिफेंड कर रही थी, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर निराशा के भाव उकर आए थे। उसने मायूसी से कहा, मेरी ही गलती है, शायद मैं आसानी से सबकी बातों में आ जाती हूँ, तभी सुबह भी मैं ही हेल्प करने के लिए उनके कमरे में चली गई थी। बोलते हुए अलीशा की आवाज़ भारी हो गई थी और उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वो रोते उससे पहले वीर ने उसके कंधे को सहलाकर कहा, डोंट वरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, यहाँ लोग चेहरे पर नकाब लगाकर घूमते हैं। अलीशा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वीर ने ध्रुव की तरफ देखा, ठीक है फिर ऐसा करो, अलीशा को अपने साथ लेकर जाओ और उस नर्स के बारे में जो भी पता है उससे उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करो, आई होप कि उसकी डिटेल सही हो, ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा। ध्रुव के कहने पर वीर अलीशा को लेकर वहां से चला गया था, जबकि अलीजा भी ध्रुव और तारा के पास से हट गई थी। पूरे दिन वे युग के साथ थे। शाम के लगभग 6 बजे के करीब ध्रुव ने जब टाइम देखा तो उसे याद आया कि आज उसे मौलिक के घर पर जाना था। युग के घायल होने की बात किसी को नहीं बताई गई थी, इसलिए मौलिक अपनी तरफ से उनके लिए पूरी तैयारी कर रहा था। वहीं ध्रुव एक बात अच्छे से जानता था, युग को होश आएगा तो सबसे पहले वो मैप्स के बारे में ही पूछने वाला है, चाहे वो इस वक्त अस्पताल में ही क्यों ना हो। ध्रुव पारा के पास गया। उसके चेहरे के हाव भाव देखते ही तारा समझ गई थी। उसने तुरंत नामे सिर हिलाया और सख्त आवाज में कहा, आर यू सीरियस? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। उल्टा ये बात तुम्हें मुझसे कहनी चाहिए। वहां तुम्हारे डैड आईसीयू में हैं और तुम्हें मेरे साथ मिस्टर मल्होत्रा के पास जाना है ताकि तुम कोई सो कॉल्ड मैप्स ला सको। तारा ने ध्रुव के साथ जाने से साफ मना कर दिया था और ये होने वाला था ये ध्रुव पहले से ही जानता था। इससे पहले कि तारा ध्रुव के पास से दूसरी तरफ जाती, ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया था। अचानक तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने अपनी कमर की तरफ देखा जहां ध्रुव ने गन पॉइंट कर रखी थी।